आज सुबह इस इतवार को, संडे की सुबह को, हम सभी भाई बहनों को सारी दुनिया में अभिनंदन करते हैं और इस भाई फ्रैंक के साथ इस खुदावंत के खालिस कलाम के बारे में आपका अभिनंदन करते हैं और खुदावंत के बड़े शुक्रगुजार और आभारी हैं कि हम खुदावंत के बताए हुए, समझाए हुए कलाम को समझ सकते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद भाई फ्रैंक को बताए कि कलीसिया से खुदा का रूह क्या कहता है। और मैं एक कलाम पढ़ना चाहूंगा, पहले एक आयत पढ़ूंगा, यहूदा की किताब जूट एक और उसकी तीसरी आयत, यहूदा एक और तीन। यहूदा एक तीन, हे प्रियो, जब मैं इस उद्धार के विषय में लिखने के लिए अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना जरूरी समझा कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब भाई फ्रैंक, खुदा उनका बड़ा धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कलाम को जो पढ़ा गया हम गंभीरता से लें, संजीदगी से लें कि उस वचन को जो हमें दिया गया हमें समझना जरूरी है और यह यत्न करना है जो खुदावन के कलीसिया के लोग हैं एक ही परमेश्वर, एक ही खुदावन, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा उनके प्रभु के कि हम उस शुरुआत की हालत में, शुरुआत की दशा में वापस आए हैं और इस कलाम को और आज हम बपतिस्मा अपना सही कर सकते हैं और अपनी शिक्षा और तालीम को भी सही कर सकते हैं, जैसा कि शुरुआत के आलम में, शुरू में, प्रारंभ में प्रभु के नाम में की गई थी। और हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब सब कुछ बहाल किया जा चुका है, सब कुछ उस हालत में वापस लाया जा रहा है और लाया जा चुका है जहां से शुरुआत हुई थी। इसलिए हम ये यत्न कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं इसके लिए कि उस विश्वास के लिए, उस ईमान के लिए जो एक बार शुरू में संतों को दिया गया था, जैसा भाई ब्रनम ने इतनी सफाई से बताया, उन्होंने बताया क्योंकि एक सच्चा विश्वास है और एक है जो कि बनावटी विश्वास है और तीसरा अविश्वास है, यानी कि जहां ईमान है ही नहीं। खुदावन हमको ये अनुग्रह दे, फजल दे कि हम अविश्वास में ना रहें और अपने बनाए हुए ईमान जैसे में ना रहें, बल्कि उस ईमान में रहें, उस ईमान में बने रहें जो कि एक बार हमको संतों के द्वारा सौंपा गया था, बताया गया था, जैसा कलाम में लिखा है। और हम सिर्फ वही सिखाएं और वही बताएं जैसा रसूलों ने और प्रेरितों ने बताया और जैसा हमको बताया गया है पवित्र शास्त्र में, वचन में। और अब हम पढ़ेंगे कोलोसियों तीसरा बाब, कोलोसियों तीन और तीन, कोलोसियों तीन तीन को अब हम पढ़ेंगे, कोलोसियों तीन तीन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जहां पर सच्चा बदलाव आता है, जहां नया जन्म सच्चा होता है और वो खुदावन की आत्मा से रूह से होता है, वहां पर ये होता है कि हम तो हमारा जो पुराना मनुष्य है, पुराना इंसानियत है, वो मर चुकी है और अब हमने नए इंसानियत यानी नए मनुष्य को पहन लिया, जिससे कि हम नई जीवन नई जिंदगी को बसर कर सकें। और ऐसा होने दे प्रभु, जितने सुनने वाले हैं, जितने भाई बहन सुनने वाले हैं, इन सबको काश प्रभु ऐसा इनके साथ होने दे, जिससे कि वो ये कह सकें सच्चाई से कि मैं भी प्रभु के साथ, खुदावन के साथ, मैं भी सलीब पर मसलूब हुआ हूँ और अब न केवल मैं बल्कि प्रभु मुझ में जिंदा है जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया। कलोशंती और चौथी आयत को पढ़ते हैं। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। आज देखे इसके लिए भी हम आमीन कहते हैं। जब खुदावन जब हमारी जिंदगियों के अंदर जब वो प्रकट होता है, जब वो पूरी तरीके से प्रकट होता है हमारी जिंदगियों में, जहूर में आता है और हमने उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक नई जिंदगी हमारे अंदर पैदा होती है, तब खुदावन हमारे जीवनों में प्रकट होता है, जहूर में आता है और उसका चरित्र, उसकी नेचर, उसका जहन, उसका प्रेम, उसका फजल जब हमको फजल से ये दिया गया, छुटकारे के द्वारा दिया गया और हमारे बीच में प्रकट हुआ, तब ये देखा जा सकता है कि ये हमारे बीच में रहता है और हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि हम बड़े संजीदगी से और सच्चाई से ये कह सकते हैं कि प्रभु ने सारी चीजों को बहाल कर दिया और नया कर दिया है। सिर्फ उसके नाम को महिमा और आदर मिले हमेशा हमेशा के लिए। अब हम पढ़ते हैं कोलोसियंस 3 और उसकी 5वीं आयत, 3 और 5 को पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो जमीन पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये आयत भी, ये कलाम भी, ये बहुत संजीदगी से हमें सावधान और चेतावनी दे रहा है सारे कि अपने उन सारे अंगों को मार डालो। हमें खुदावन की आदर को रखते हुए इन सारी चीजों को, जो अपना जीवन है, जो हमारी जिंदगी है, उसे वेदी के ऊपर रख देना है और बलिदान करना है। कह देना हे प्रभु कि हे प्रभु, तेरा जीवन, तेरी जिंदगी मेरे द्वारा जी जाए, मैं तेरे द्वारा जीऊं और मेरी जिंदगी बसर करूं तेरे फजल से, क्योंकि हम ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं, क्योंकि खुदावन अपने ईमानदार फर्जंदों के बीच में रहता है। उसके नाम को जलाल मिले हमेशा के लिए। कलोसियों 3 को पढ़ते हैं आगे और 8 से 10 तक कलोसियों 3 8 से 10 तक पढ़ते हैं। पर अब तुम भी इन सब को यानी के क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को यानी पुरानी इंसानियत को और उसके कामों समेत उतार डाला है और नए इंसानियत नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप में उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखिए आमीन, ये भी हमारी जीवनों में हमारी जिंदगियों में इसको सच्चाई बनना है कि हमने अपने पुराने मनुष्य को पुराने इंसान को हटा दिया, उतार दिया और अब हमने नए इंसानियत को नए मनुष्य को पहन लिया जो खुदावंद की इमेज में बनता है, यीशु की इमेज में बनता है। और अब हम नए जीवन को नई जिंदगी को बसर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहला योना दो और उसकी 17 आयत। पहला योना 2:17, पहला योना 2:17। आज अभी हमने ये देखा, अभी हमने ये कहा, इन सारे वचनों में, इन सारे कलाम में हमने ये देखा और ये बात समझने की है, आज परमेश्वर आपके पड़ोसियों या दूसरों से बात नहीं कर रहा, आज तो प्रभु हम सब से खास तौर पे व्यक्तिगत रूप से अपने कलाम से बात कर रहा है। और ये कलाम जो है ये शीशे की मानिंद हमारे सामने रखा हुआ है कि हम इसमें देख सकते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ इस वचन के अनुसार चल रहा है जैसा कि यहाँ लिखा है। क्योंकि जब हम खुदावंद हमसे खुश होता है और तभी हमारे अंदर वो इत्मीनान होता है, तभी हमारे को वो गारंटी और एश्योरेंस है कि हम रैप्चर में जा सकेंगे। और हमारी और खुदावन जो था वो इनोक से खुश था, इसीलिए वो रैप्चर में जा सका। इसी तरीके से हम भी ईमान में खुदावन को पसंद आने चाहिए, हमारे नजात दहिंदा को हम पसंद आने चाहिए। और ये कहा गया था कि ये, और उस जैसा हमारे प्रभु के बारे में कहा गया था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं निहायत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ चुका है जब प्रभु हमारे अंदर रहना चाहता है और हमसे खुश रहना चाहता है अपने बेटे और बेटियों से, इसलिए जिससे कि हम उसकी मर्जी में पाए जाएं और उसके फजल से, उसके अनुग्रह से उसकी मर्जी में पाए जाएं और कोई ऐसी बात ना रह जाए हमारे ऊपर जिससे कि हम निंदा के योग्य ठहरे, पर फिर हमारी समझ और हमारा मन एकदम साफ हो जाना चाहिए, हम पवित्र हो जाना चाहिए अपने दिलों में, क्योंकि जो दिल के पाक हैं, मन से पाक हैं, पवित्र हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे, वही खुदावंद का दीदार करेंगे। और खुदावंद काश अपने बेटे और बेटियों पर ये बातें खास तौर पर अब खुदावंद ऐसा करे कि अब हम दिल से साफ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उसके खून से धोए जाएं और साफ किए जाएं और खुदावंद के कलाम से पाक साफ किए जाएं। और यीशु के नाम में हम ये मांग लेते हैं। और हम इब्रानियों की खत को पढ़ते हैं, इब्रानियों 13:4 को पढ़ते हैं, इब्रानियों 13:4 अब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 13:4 को पढ़ते हैं। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों पर परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। देखिए खुदावन ने हर चीज के बारे में सोचा और बनाया बताया, और चाहे बच्चे हों, चाहे नवयुवक हों, नौजवान हो, चाहे वो शादी के बारे में जिक्र हो, और प्रभु ने हर चीज को बड़ी सफाई से बताया है। उसने ऐसा होने दिया कि सारी चीजें लिखी जाएं और कलीसिया को बताई जाएं, कलीसिया को दी जाएं। और इसमें शादी यानी विवाह भी इंक्लूडेड है, क्योंकि शादी जो है उसको भी वो भी एक इज्जत का बायस है, इज्जत का विषय है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जितने विश्वासी लोग हैं वो ये जानते हैं कि क्या चल रहा है आज के समय में, क्या चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, क्या हो रहा है। और पौलुस बताता है, और पौलुस ने इसको पहले से बता दिया था, इजहार कर दिया था इसका। हम पढ़ते हैं रोमियो एक और उसकी 26 आयत और 26 और 27 आयत। रोमियो एक 26 और 27, रोमियो एक छब्बीस और सत्ताईस। इसे परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, ताकि यहाँ तक कि उनकी औरतों ने भी स्वाभाविक विवाह को, जो स्वभाव के विरुद्ध है, जो नेचर के अगेंस्ट है, उसको बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के स्वभाव को व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का फल पाया। अब देखिए ये भी ये कलाम भी इसका हिस्सा है जो बात हम कर रहे हैं। क्या हुआ वहां पर अब्राहम के वक्त में, वहां सदोम और गमोरा का वक्त था, और अब्राहम ऐसे वक्त में रहता था 2000 साल पहले, और आदम के 2000 साल बाद अब्राहम रहता था, और सारी दुनिया वो बार बार ऐसी हालत में चली गई थी, ऐसी खराब हालत में चली गई थी जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और खुदावन को उसका खात्मा करना था, उसकी समाप्ति करनी थी, और जो सदोम और गमोरा में रहते थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के नाम का मजाक उड़ाया, ठट्टा उड़ाया, और उसने जो उसकी आज्ञाएं थी उसको पैरों के तले रौंद दिया, और खुदा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका, और इसलिए खुदावन ने ईमानदारों से, विश्वासियों से कहा कि ये शादी जो है ये आदर और सम्मान में होनी चाहिए, और जो बिस्तर है वो निष्कलंक होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। ये समझाना भी जरूरी है, इसका प्रचार करना, इसका बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है और ये हमारे लिए लिखा गया है। इसका यकीन करें, इसको ग्रहण करें, इसको माने। अब हम पढ़ते हैं इफिसियों एक और उसकी पहली आयत। इफिसियों एक और एक। एक में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु का प्रेरित है, उन पवित्र मसीह में यीशु के विश्वासियों के नाम जो इफिसस में है। देखिए हमने ये कलाम इसलिए चुना कि ये बात हम समझा पाए, बता पाए, क्योंकि बाइबल के समय में वहां पर सिर्फ एक ही कलीसिया थी, एक शहर में, एक नगर में एक ही कलीसिया होती थी, एक ही मंडली होती थी। और यहाँ पौलुस बता रहा है इस खत में ये बता रहा है वो कलीसिया जो है वो इफिसस की जो मंडली है जो कलीसिया है पौलुस उसको ये खत लिख रहा है। और अगर आप मुकाशवा 2 और 3 को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो सात कलीसिया के जो संदेश है वो सात कलीसियाओं को दिए गए, सात मंडलियों को दिए गए, जो सात अलग अलग कलीसियाओं में पाए जाते, अपने अलग अलग नगरों में पाए जाते थे। और वो सारे नगर जहां पर वो लिखे हुए हैं एफिसस से लेकर लौदीसिया तक जो सात नगर की सात कलीसियां थी उनके बाद में उनके बारे में लिखा गया है। और ये समझना जरूरी है। अब हम वापस जाते हैं अब हम अमाल की किताब प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में वापस जाते हैं। प्रेरितों के 2 में हम जानते हैं वहां बताया गया जब पतरस ने प्रचार किया और कलाम दिया तो 3,000 लोग वहां उनका बपतिस्मा हुआ और वो फजल और अनुग्रह और पापों से छुटकारा ये सारी चीजें जो पतरस ने उनको प्रचार किया वो उन्होंने उसको ग्रहण किया, यकीन किया और वो उन्होंने बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार से और वहां पर 3,000 लोग उस नई कलीसिया नई मंडली के अंदर में शुरुआत की कलीसिया में 3,000 लोग बदले गए। और जब हम एमाल 4 और 4 को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 और 4 को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां तो ऑलरेडी करीब 5,000 लोग थे उस समय कलीसिया में मंडली के अंदर। और अगर हम ये और सही तरीके से पढ़े तब हम देखते हैं कि बाइबल की शिक्षा जगह जगह पर बार बार होती थी, घरों घरों में बाइबल की शिक्षा दी जाती थी, बाइबल स्टडी होती थी। और पर वहां सोलोमन के कमरे में सोलोमन हॉल में लोग इकट्ठे होते थे खुदावन का कलाम सुनने के लिए इकट्ठे होते थे जुड़कर। कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर प्रेरितों के वक्त में रसूलों के वक्त में कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर बहुत ज्यादा 8, 9, 10, 7, 9 इतनी कलीसियां थी, ऐसा नहीं था। और खुदावन ने हमेशा ऐसा देखा और खुदावन ने अपने कलाम को हमेशा कलाम को खुदावन ने अपने संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर के थ्रू भेजा और तब उसने आगे प्रचार किया आज भी। इसलिए मैं आज पूछता हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं ये भाई पेरिग्रीन के बारे में जिन्होंने कहा कि ट्यूसॉन एरिजोना में वहां तो 9 कलीसियां 9 मंडलियां बन गई हैं जो के मैसेज बिलीवर अपने आप को क्लेम करते हैं। तब मैंने पूछा कि उनमें से कौन 9 कलीसियाओं के जो भाई हैं उनमें किसको बुलाहट है, किसको ये बुलाहट मिली, किसको खुदा की तरफ से ये बुलाहट मिली कि आज्ञा मिली प्रचार करने के लिए। उन्होंने तो सब ने वो किया, वो कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। हम तो परमेश्वर की ओर खुदा की ओर वापस आना चाहते हैं, उसके कलाम की तरफ वापस आना चाहते हैं इस समय के जो कलाम के लिए। एक अगर हम बताएं कि अगर पौलुस जो है रसूल जो पौल प्रेरित है वो भी उसको अगर आज क्रेफिल्ड की कलीसिया को ये खत लिखना होता तो वो किसको लिखता, वो किसको लिखेगा। हमारे जमाने में हमारे एरिया में 4 डिफरेंट मंडलियां हैं जो कि ब्रदर ब्रैनम के बारे में जिक्र करती हैं और अंत के समय के मैसेज के बारे में प्रचार करती हैं। पर अगर हम ईमानदार रहें हमको तो वापस उस हालत में जाना जरूरी है जहां पर हमको तो उस हालत में बहाल होना जरूरी है शुरुआत की हालत में जो कि अमाल की किताब में जिसका जिक्र है कि इफिसस की जैसे कलीसिया थी और उन सारे नगरों और शहरों के बारे में जो अब ये भी बस हमको उस शुरुआत में भी जाने की जरूरत है, उस प्रारंभ में भी जाने की जरूरत। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि अब हमने भाई ब्रैनम की शिक्षा को, भाई ब्रैनम के संदेशों को, इस्तेमाल किया, जिससे कि वो जो संदेश है इस समय का, इस घड़ी का जो संदेश है, वो तो वापस अपनी वो शुरुआत की हालत में, बहाली की हालत में आ जाए। और अब हमने इस चीज को जाना और समझा कि हमारी जो अपनी करतूतें, हमारी जो अपनी शिक्षा है, वो परमेश्वर के सामने खड़ी नहीं रह सकती, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। बल्कि वो नियम, वो तरीका जो खुदावन ने अपने वचन में बताया, वो कलीसिया में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि खुदा ने अपने वचन में लिखा। इससे पहले कि खुदावन आए और खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि उसने खुद स्वयं और खुद वो अपने हर काम की जिम्मेदारी लेता है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों एक और उसका दसवीं आयत। पहला कुरिन्थियों एक दस को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों एक दस और वहां लिखा है, ए भाइयों, मैं तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परन एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन में और एक ही मत में मिले रहो। आमीन। ये वो आत्मिक शिक्षा है। ये जो आयत है, ये दोबारा भी पढ़ी जानी चाहिए। उसी मन में रहो, उसी मत में रहो, एक ही मन में, एक ही मत में रहो। तुम में कोई अलग विपरीत या अलग दर्शन या अलग ज्ञान या अलग शिक्षा ना हो। किस आयत को दोबारा पढ़े प्लीज? पहला कुरिन्थियों एक दस, ए भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु मसीह के बारे में विनती करता हूं। पौलुस विनती कर रहा है ये कि यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। मैं प्रभु के नाम में विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और एक ही मत में होकर मिले रहो। और तुम्हारे बीच में तुम सब में कोई फूट ना हो और एक ही बात बोलो। क्या आप इस बात से को मानते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इस बात को प्रभु के सामने रखकर मानना चाहते हैं या आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं? मैं अगर मुझे सच्चाई से ये कहना पड़े, मुझे तो बड़ा हार्दिक दुख है इस बात का कि अलग 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 शिक्षाएं अलग अलग दिशाओं में जो चल रही हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। जैसा कि इस आखिरी समय के कलाम में कहा गया और इस मैसेज से बाहर या इस मैसेज को लेकर कहा गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भाई ब्रनम के बारे के वक्त में जो लॉर्ड सफर था, वो तो भाई ब्रनम के जिंदा रहते रहते छोटे छोटे गिलासों में, सैकड़ों गिलासों में दिया जाता था। और अब देखिए, अब मुझे एक बक्सा भेजा गया है, देखिए कि लॉर्ड सफर कैसे मनाया जाए। मुझे एक बक्सा भेजा गया, मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए, ये तो देखिए, ये गलत शिक्षा है। ये छोटे से गिलास के अंदर एक हाथ में जो देखिए, इसमें एक साइड में तो जो ब्रेड बना के रखी गई है और एक साइड में जूस रखा गया है। ये जो ब्रेड दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए वेफर है, छोटा सा है, क्या आप इसे देख सकते हैं? बिस्किट टाइप का, और इसके ऊपर रख दिया गया है, और उसके बाद एक ढक्कन है, और उसके अंदर में वो लिक्विड है, वो जो जूस है, और उसके बाद बंद किया गया। देखिए, ये इस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, जो प्रभु भोज में हिस्सा लेता है पाक, देखिए वो इस तरीके से काम करता है। और ये ढक्कन हटा के और पहले इस वेफर को खाता है और फिर इसको खाके फिर इसके अंदर जो लिक्विड है और उसके अंदर जो लिक्विड है उसको पी लेता है। ये सब बेकार की बात है। मैं क्या ये जरूरी है, किस तरीके की बातें मैसेज में हो सकती हैं, क्या ये वाहियात बातें इस तरीके की खुदा के कलाम में हो सकती हैं? मैं तो खुदा से करा कर कहता हूँ, दुखी होकर कहता हूँ कि खुदा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस तरीके की शुरू ये सेवन थंडर्स और सेवन सील्स के बारे में लेकर और के भाई ब्रनम दोबारा वापस आता है जिंदा होकर के इस तरीके की शिक्षाएं और पुनरुत्थान उसके समय में होगा और यहाँ पर जो और 4 से 6 हफ्ते तक जो जी उठने वाले लोग हैं, ये कितनी झूठी शिक्षाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। देखिए इसके बारे में सोचें और देखिए ये और ये भाई ब्रनम को लेकर और इस अंत के समय को मैसेज को लेकर की ये बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। मैं खामोश नहीं रह सकता, मेरे पास तो आत्मिक बुलाहट है और मेरे पास आत्मिक भेजा जाने की भी आज्ञा है और इससे मैं ये जानता हूँ कि ये बातें इन चीजों से इससे मुझे पता है कि खुदा उनकी दुल्हन की जो कलीसिया वो पूरी हो रही है, कामिल हो रही है। मैं तो बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो भाई जिन्होंने अपनी अपनी शिक्षा बना ली है और अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? उन झुंडों को बनाकर उन ग्रुप्स को बना के आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो बंटवारा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि बाइबल उनके बारे में क्या बताती है। अब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं यहूदा और उसकी 19 आयत, यहूदा का खत उसकी 19 आयत। और ये लोग हैं जो फूट डालते हैं, शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। देखिए ये वो लोग हैं जो फूट डालते हैं, शारीरिक लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं। और भाई ब्रैनम ने बताया और उन्होंने बताया, ये कई बारी बताया अपने शिक्षाओं में बताया, 1965 में जो उन्होंने वचन दिया और रोमियो 18 से उन्होंने प्रीच किया, रोमियो 8:11 से भाई ब्रैनम ने प्रीच किया कि अगर वो आत्मा जो जिसने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अगर वो रूह वो आत्मा तुम्हारे इन जिस्मों के अंदर रहेगा तभी तुम भी जिलाए जाओगे, तभी तुम भी जिंदा किए जाओगे। खुदावन का वो रूह हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है जिससे कि हम इस बात इस रूह के चलाए चले, उस पाक रूह के चलाए चले जो खुदावन का रूह है। क्या फायदा है कि उन टुकड़ों में रहें, उन टुकड़ों में रहें और उन गलत शिक्षाओं में रहो और वो सारे भाई और उनके बारे में ये कहना जरूरी है जो इस तरीके की शिक्षा देते हैं कि जो भाई ब्रनम के वक्त में उन लोग रहे और उन्होंने इस बात को जाना और माना और पहचाना कि खुदावन ने क्या किया उस वक्त के दौरान और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद भी दिया। पर जो अब रहते हैं, क्या हम भी इस बात को पहचान सके, मान सके कि आज खुदावन आज के वक्त में क्या कर रहा है, इस कलीसिया में खुदावन क्या कर रहा है? जो खुदा उनकी दुल्हन की कलीसिया के लोग हैं वो सब उस तरीके से हिस्सा लेंगे जो खुदावन आज कर रहा है, उसके उसी को सारा जलाल और महिमा और आदर मिले। खुदावन ने तो लगातार निरंतर अपने काम को कर रहा है, उसने भाई ब्रनम की सेविकाएं के साथ किया, उनके खिदमत के साथ किया और वो कलाम जो है वो सारी दुनिया में भेजा गया और 50 साल से भी ऊपर के वक्फे में समय में ये कलाम ये संदेश सारी दुनिया में भेजा गया। और जो इस चीज के लिए चुने हुए हैं, जो कि दुल्हन के लिए चुने हुए लोग हैं और जो रैप्चर के भागी हैं, रैप्चर के हिस्सेदार हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और वो सुन रहे हैं और सारी दुनिया में वो इस संदेश को सुन रहे हैं अपनी अपनी भाषाओं में, इस संदेश को सुन रहे हैं, इस आत्मिक इस आखिरी मैसेज को सुन रहे हैं, और जो वो इस बुलाए जाने की और तैयारी के और अलग किए जाने के संदेश को सुन रहे हैं, और वो उनका उनका इस तरीके से निर्धारण और निर्वाचन हुआ है, चुना हुआ है, और उनको सिखाया जा रहा है कि वो अपने आप को खुदावंत के कलाम के सामने सबमिट कर दें, और खुदावन का जो नियम है उसकी जो योजना है उसमें सबमिट कर दें। हम इतने आभारी हैं, इतने खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि हमने कि हम तीन दफा सब लोग सुन सकते हैं, सब जगह सुन सकते हैं उन वचनों को, जो चाहे वो संसाठ में चाहे भाई ब्रैनम ने प्रीच किया हो, या उसके बाद 80s में 80 के शतक में, अब और सब इस बात को सुन सकते हैं, इस वचन को सुन सकते हैं सारे संसार में, जो जो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए थे वो सब इस बात को आज सुन सकते हैं, और ये अपने आप को खुदावन के सामने पेश कर सकते हैं। मैं बार बार ये विनती करता हूँ और भाई और बहनों से कहता हूँ, जिनको गलत शिक्षा में अगुवाई दे दी गई, वापस आ जाएं, खुदा के कलाम की इज्जत करें, खुदा के कलाम को इज्जत दें, और उस बुलाहट को इज्जत दें जो खुदावन का अलौकिक की अलौकिक बुलाहट है, जो इस वक्त के लिए है। आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4:4। और जिन्होंने यहाँ पर प्रेरितों के काम एमाल 4:4 में लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस तरीके से भाई और भाइयों और बहनों की गिनती बढ़ती गई। और हमारे समय में भी, और हमने देखा कि अफ्रीका के देशों में, मुल्कों में, और दूर दूर तक आइवरी कोस्ट से और पश्चिमी अफ्रीका और मध्यम अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, सब जगह पर एशिया में और दूसरे मुल्कों में भी खुदावन ने बुलाया है, थाउजेंड्स हजारों में उन लोगों को बुलाया है जो उसके चुने हुए लोग हैं, और ऐसे तो लाखों में ऐसे लोग होंगे जो कि दुल्हन की कलीसिया के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। और अब्राहम को बोला था कि तू सितारों को गिन नहीं पाएगा, जो सितारों के समान, जो कण के समान तेरी वंश होंगे उनको गिन नहीं पाएगा। इसी तरीके से वो भी होंगे जो आज तैयार हैं, खुदावंत को मिलने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कहता हूँ, मैं खुदावंत के सामने हाजिर नाजिर होकर ये कहता हूँ कि मुझे इस बात की बुलाहट मिली और मुझे वो आवाज सुनाई दी, और वो खुदावंत की 19 सितंबर 1976 को के खुदावंत के कलाम का प्रचार करूं, और उस पाक इस फूड को, इस खुराक को बांट सकूं, लोगों में बांट सकूं। और मैं तो बहुत सारी अलौकिक बातों का वर्णन कर सकता हूं, पर खास तौर पर जब खुदावन ने मुझे बुलाया और मुझे कहा, मुझे आज्ञा दी सुबह सुबह, और उसने कहा कि दूसरा तिमोथियो 4 को पढ़, और मैं तुझे आज्ञा देता हूं, और मैं आपको और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन जो है वो जिंदा और मुर्दा दोनों का इंसाफ करेगा, वो अपने राज्य में हर एक का इंसाफ करेगा। मुझे तो एक आज्ञा मिली है, मुझे आत्मिक आज्ञा मिली है कि केवल मैं वचन को, सिर्फ कलाम को, खालिस कलाम को ही प्रीच करूं। और इसमें से कुछ ना निकालूं मेरे लिए, तो ये हमेशा हमेशा के लिए कायम है, हमेशा हमेशा के लिए लागू है। जैसा के मकाशफा के पहले बाब और आयत पहले 1-3 में लिखा है कि हर उस बात को माने और उस पर यकीन करे जो इस कलाम में लिखी हुई है। और मकाशफा 22 में लिखा हुआ है कि जो कि इस कलाम में कुछ ना जोड़े और ना निकाले, जो इसमें लिखा है उसको वैसे ही माने। यही वो बात है, यही वो बुलाहट है, यही वो आज्ञा है, यही वो आत्मिक आज्ञा है जो खुदावन ने मुझे दी, जो प्रभु ने मुझे दी, और ये आज भी लागू है। और इतने हजारों वचन जो मैंने प्रचार किए हैं, मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं प्रचार करी जो कि इस वचन में, इस कलाम में लिखी हुई है या इससे बाहर है। मैंने तो खुदा के कलाम को ही पेश किया है, और जिनको खुदा ने कलाम दिया और जो भाई ब्रैनम ने प्रीच किया, जो जो कि इंसान की गिरावट की कंडीशन से लेकर वो सारे भेद जो छुपे हुए थे, पर वो सारे के सारे भेद जो छुपे हुए थे, वो सारे के सारे भेद पाए भी जाते हैं, पाए भी कलाम में ही जाते हैं। और हम, मैं खुदा उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि दुल्हा जो है वो दुल्हा जो है वो खुदा का वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, ये वो कलाम है जो 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 देह में आया, जो जो मुजस्सम हुआ, वो आज कलाम हमारे सामने है। वही प्यार, वही 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 शुद्ध है और वही पाक है। जैसे कि दुल्हन जो है आदम में से निकाली गई थी और उसके सामने लाई गई, उसी तरीके से ये दुल्हन जो है ये खुदावन में से निकाली गई और उसके सामने पेश करी जाएगी, और उसके हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस हो जाती है। इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, पर ये बिल्कुल प्योर यानी कि शुद्ध, जैसे कि दुल्हा पवित्र है, उसी प्रकार से दुल्हन भी पवित्र है। प्रभु के नाम की सिताइश हो, महिमा हो, प्रशंसा हो उसके लहू के लिए और उसके वचन के लिए जो कि पवित्र है, और पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई करता है सारी सच्चाई में। और जैसा पौलुस ने बताया कि हमको बेदाग और बेऐब खुदा के सामने पेश किया जाए, उसकी दुल्हन बनाकर, सिर्फ उसको और सिर्फ उसको ही सारी महिमा मिले। हम पढ़ते हैं, अब आखिरी कलाम पढ़ रहे हैं, फिलिपियों 1 और 6 को पढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया वही उस मसीह के दिन के आने तक उसे पूरा भी करेगा। आमीन। ये मेरी भी प्रार्थना है, मैं कहता हूँ ये भी मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि प्रभु वो आज उस काम को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, और खुदावन का जो रूह है उसका काम उन पर ही आएगा जिन्होंने के उस आत्मिक बीज को पाया, और वो आत्मिक बीज उनके अंदर पाया जाता है, और जिनका हृदय पवित्र है, जिनका मन साफ है और हलीम है, जिससे कि खुदा अपने मकसद को उनके जीवन में, उनके हर वादे में, अपने हर वादे को पूरा कर सकता है। और वो कहते हैं आमीन, और हर एक वादा जो खुदावन ने किया वो कामिल होगा और पूरा होगा उन सब की जिंदगियों में, जब तक कि हमारा खुदावंद वापस नहीं आता उसके आने के दिन तक। हम इस बात को अब इसका निचोड़ देखें कि क्या करना, आज क्या कहने की जरूरत है। जितने खुदावंद के सच्चे बेटे और बेटियां हैं वो वापस खुदावंद के खालिस कलाम में आए, और उनमें से निकल आना है उन सारे गलत शिक्षाओं से बाहर निकल कर आना है और हर जगह में सिर्फ एक ही कलीसिया का होना जरूरी है। और इस तरीके से खुदावंद इस तरीके से अपने काम को कामिल कर सकता है और पूरा करेगा, जिससे कि सब उस बात को सुन सकें कि रूह कलीसिया से क्या कहता है। हम प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हो जाएं, उसका धन्यवाद करें कि उसने भाई ब्रैनम को भेजा और जिसने इस बात को शुरू से जाना कि किस प्रकार से खुदा ने उनको बुलाया और क्या क्या बातें उनके जीवन में हुई और क्या बुलाहट, क्या आज्ञा, क्या सेवा उनको दी गई कि इस कलाम को, इस संदेश को आगे लाकर पेश करें, जिससे पहले कि खुदावंद की दूसरी आमद हो और ये जो मैसेज है, जो संदेश है, फिर सारे संसार में भेजा गया और भेजा जाने के लिए ये मैसेज भेजा गया और आया, और जिससे कि वो बुलाहट प्रचार की जाए, जिससे कि ये कहा जा सके हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, अपने आप को अलग कर लो और जो अपवित्र, जो अशुद्ध चीज है उसको मत छुओ और सारी चीजों को चेक कर, इस वचन में लिखा है, और वापस प्रभु के पास वापस आ जाओ, इससे पहले कि वो हमारे अंदर अपने काम को पूरा कर सके, कंप्लीट कर सके। और हम विश्वास करते हैं कि क्या लिखा है, जिनको उसने पहले से जाना, उसने उनको बुलाया, और जिसको बुलाया उसको धार्मिक भी, राष्ट्रवाद भी ठहराया, और जिसको धार्मिक और राष्ट्रवाद ठहराया उसने उसको महिमा से भी पूर्ण किया, उसको महिमा भी दी। ये तो पूरा का पूरा उद्धार है, ये उद्धार की पूरी योजना है, और लोग आज उसके उद्धार के काम को पूरा कर रहा है, उसकी समाप्ति कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है अपनी कलीसिया के अंदर, अपनी मंडली के अंदर। और अब आखिर में एक उत्साह के बारे में प्रशंसा की बातें कर, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से माफी करें, एक दूसरे से अपनी गलतियां मान लें, और कि कोई गलत शिक्षा अगर उन्होंने दी है तो उसके लिए क्षमा मांगे, अगर उनको गलत अगुवाई करी है तो उसके लिए क्षमा मांगे, सुधार करें, आपस में आ जाएं, एक साथ आ जाएं और एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से माफी मांगे और एक दूसरे से कहें, और फिर प्रभु जो है, फिर खुदावंद उनको फजल और अनुग्रह देगा। हम तो खुदावंद के आने के वक्त से बिल्कुल बिल्कुल आखिर पर रहे, मैं नहीं जानता अब क्या होने के लिए रह गया, कौन मुझे बता सकता है कि अब क्या होने, क्या सब कुछ हो नहीं चुका, क्या सब कुछ कंप्लीट नहीं हो चुका जो कि होना था, जो खुदावंद के आने से पहले होना था, सब कुछ हो चुका, क्या सब कुछ नहीं कंप्लीट हो गया जो हमारे खुदावंद ने कहा था, खुदावंद ने जो बताया था, क्या रह गया, अब क्या बच गया जो कि अब होना बाकी, बताएं मुझे। और इज़राइल अपने घर में, अपनी जमीन पर आ गया और बहुत और सारी चीजें कामिल हो चुकी है, और जैसा खुदावंद ने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं फिर बड़ी जोर डालकर ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी से खुदावंद के कलाम पर वापस आ जाएं, उसके कलाम पर वापस आ जाएं, और खुदावंद का वो प्यार वो मोहब्बत हमारे अंदर भर जाए, जिससे कि हम आपस में जुड़े रहें, एक मत में हो जाएं, एक मन में हो जाएं, और वही बातों का परिमान रखें और वो सारे कलाम को परिमान रखें और उसको ग्रहण करें और रिसीव करें उस हरेक वादे को जो कलीसिया को दिया गया और दुल्हन को दिया गया, और उन सब चीजों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, जैसा पौलुस ने कहा, उसने कुरिन्थियों को बताया था, दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले बाब में और उसकी 19वीं 19 और 19 से 22 आयत में पौलुस ने कहा था कि खुदावन के जो कलाम है, उसके जो वचन है, वो अपने अपने लोगों के जीवन में पाए जाते हैं, और खुदावन के सारा का सारा वचन हमारे जीवन के अंदर कामिल हो, पूरा हो जाए। सभी नौजवान और जो शादीशुदा है और जो बुजुर्ग हैं और जो कमजोर हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हम हो, खुदावन हमारे को ऐसी आशीष दे, सब फजल दे कि हम जिस हालत में भी हैं, हम खुदावन के लिए खुदावन के कलाम को बड़े इज्जत के साथ हम जी सकें, और हम हमारे पर कोई इल्जाम ना लगे, हम बेदाग और बेआब रहें, और तब हम खुदावन के सामने खड़े हो पाएंगे। एक ही बात करनी रह गई है, जिससे कि हम बार बार खुदावन का शुक्रगुजार करें, उसका धन्यवाद करें कि जो कुछ अब हो रहा है ये तो बिल्कुल आखिरी काम है, ये बिल्कुल आखिरी काम इस चर्च में, इस मंडली में, खुदावन की कलीसिया में चल रहा है, ये बिल्कुल आखिरी काम है। और जो 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 खुदावन की दुल्हन की कलीसिया के सदस्य मेंबर है, वो सुन लेंगे के रूह इस वक्त कलीसिया से रूह क्या कह रहा है, सुन लें, और सुन लेंगे वो। और खुदावन की आशीषें आप सब पर आ जाएं। खुदावन आपको एक ऐसा मन दे जो ईमानदार हो, और खुदावन के कलाम पर चलने वाला बने, और खुदावन यीशु के नाम में हम ये मांग लेते हैं, आमीन। और अब हम भाई बहुत प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस खास कलाम को, पाक कलाम को हमको दिया, तूने बिल्कुल सफाई से हमसे बातचीत कर ली, और तूने अपने लोगों के लिए इस कलाम को दिया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये तो सच, ये सच्चाई है, और इसमें जीवन है, और ये उस चीज, उस जिस काम के लिए भेजा गया उसको पूरा करता है। प्रभु, हम इस चेतावनियों के लिए, इस शिक्षा के लिए कि हम यत्न करे रहें, उस विश्वास को थामे रहें जो हमारे को भेजा गया था, जो हमारे, और हमारी सहायता कर और हम पर फजल कर के जो अपने लोगों को आशीष दे, अपने भाई, सारे भाई बहनों को आशीष दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस आखिरी कलाम के लिए, वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने नबी को भेजा, और हम ये विश्वास करते हैं, ये जान लेते हैं और मान लेते हैं कि तू अपने लोगों के साथ वापस आने वाला है, और हम सब के ऊपर, हम सब पर तेरा फजल हो। खुदावन यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन, आमीन।